लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे विश्व के समस्त ख्रिस्तीय परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे बिला शर्त प्रेम का वरण कर सच्चे प्रेम का अनुभव करें और अपने दैनिक जीवन के हर स्तर पर पवित्रता में अग्रसर होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है संत पेत्रुस और पौलुस के महापर्व दिवस पर संत पापा फ्रांसिस का दिया गया प्रवचन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने रोम के संरक्षक संतों पेत्रुस और पौलुस के महापर्व के अवसर पर वैटिकन के संत पेत्रुस महागिरजाघर में यूखारिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने मिस्सा बलिदान के दौरान अपने प्रवचन में कहा,
La testimonianza dei due grandi apostoli Pietro e Paolo rivive oggi nella liturgia della Chiesa.
दो महाप्रेरितों पेत्रुस और पौलुस का साक्ष्य आज के कलीसियाई धर्म विधि में पुनः सजीव बनकर आता है। राजा हेरोद के द्वारा बंदीगृह में कैद पेत्रुस को ईश्वर का एक दूत कहता है, जल्दी उठिए। वहीं पौलुस अपने पूरे जीवन को मुड़कर देखते और कहते हैं, मैंने अच्छी लड़ाई लड़ी है। हम अपने आप से पूछें कि ये दो वाक्याएं आज ख्रिस्तीय समुदाय से क्या कहती हैं, जो सिनोडालिटी की प्रक्रिया में संलग्न है। प्रेरित चरित से पहला वाक्य हमें उस रात के बारे में जिक्र करता है, जहां पेत्रुस बंदी गृह में जंजीरों से मुक्त हुए थे। स्वर्गदूत ने उनकी बगल को थपथपाते हुए कहा, जल्दी उठिए। स्वर्गदूत पेत्रुस को जगाते और तैयार होने को कहते हैं। यह दृश्य हमें पास्का की याद दिलाती है, क्योंकि हम इसमें पुनरुत्थान की दो क्रियाओं को समाहित पाते हैं, जागना और तैयार होना। वास्तव में स्वर्गदूत पेत्रुस को नींद से जागने और तैयार होने को कहते हैं, जिससे वे उजाले की ओर जा सके। वे अपने को ईश्वर के द्वारा संचालित होने देते हैं, जो उन्हें सभी बंद दरवाजों से ले चलते हैं। यह निशानी कलीसिया के लिए वृहद मायने रखती है। हमें और ख्रिस्तीय समुदाय को यीशु ख्रिस्त के शिष्यों के रूप में जल्दी उठने का निमंत्रण दिया जाता है। हमें पुनरुत्थान के रहस्य में प्रवेश करने और अपने को यीशु ख्रिस्त की इच्छा अनुसार उनके मार्ग में संचालित होने का बुलावा दिया जाता है। फिर भी हम अपने अंदर बहुत सारे अवरोधों का अनुभव करते हैं, जो हमें तैयार होने में बाधक बनते हैं। कभी कभी कलीसिया के रूप में हम सुस्तीपन का शिकार हो जाते हैं। उठने और नए क्षितिज की ओर देखने, खुले समुद्र की ओर जाने के बदले हम बैठे रहकर कुछ निश्चित चीजें, जिन्हें हम अपने में धारण करते हैं, चिंतन करने की सोचते हैं। बहुत बार हम पेत्रुस की तरह अपनी आदतों की बेड़ियों परिवर्तन के भय और अपने दैनिक दिनचर्या से कैद रहते हैं। यह हमें चलता है वाली सामान्य आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर करता है। हमारी प्रेरिताई की उत्साह क्षीण हो जाती और जीवटता तथा रचनात्मक होने के बदले हम सुस्त और प्राणहीन हो जाते हैं। सिनोड की प्रक्रिया जिसमें हम संलग्न हैं, हमें कलीसिया बनने हेतु उठने का आह्वान करती है, जिससे हम अपने कैद खाने से निकलते हुए दुनिया से मिलें। बेड़ियों और दीवारों के बिना कलीसिया, जहां हर कोई स्वागत किया जाता और सहचर्य का अनुभव करता है, एक जो सुनती, वार्ता करती और सहभागी होती, केवल पवित्र आत्मा के माध्यम अनुप्रेरित होती है। कलीसिया जो अपने में स्वतंत्र और नम्र है, वर्तमान समय की चुनौतियों में जल्दी उठती और ढीली ढाली नहीं होती है। वह कलीसिया अपने को पवित्र चार दीवारी तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उत्साह के साथ सुसमाचार प्रचार और हर एक के संग मिलती और उन्हें स्वीकार करती है। संत पापा ने इस बात पर जोर दिया कि कलीसिया के रूप में हमें सबों का स्वागत करना है। हमें इस बात को हृदय में धारण करने की जरूरत है कि कलीसिया के दरवाजे सबों के लिए खुले हैं, वहां सबों के लिए स्थान है। दूसरे पाठ में हम संत पौलुस के वचनों को सुनते हैं, जो अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते और कहते हैं, मैंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी है। प्रेरित उन असंख्य परिस्थितियों के बारे में कहते हैं जहां उन्हें सतावट और दुख झेलना पड़ा, लेकिन वे वैसी परिस्थितियों में भी यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार का प्रचार करते रहे। आज भी यह अपने में एक वृहद लड़ाई की ओर इंगित करता है जो इतिहास में जारी है, क्योंकि बहुत से लोग यीशु ख्रिस्त को स्वीकारने की स्थिति में नहीं हैं। वे अपनी ही इच्छा अनुसार दूसरी बातों शिक्षा की ओर झुक रहे हैं जो उन्हें सहज आरामदेह लगता है। पौलुस ने अपनी लड़ाई लड़ी है, उन्होंने अपनी दौड़ पूरी की है। वे तिमथी और समुदाय के भाइयों से आग्रह करते हैं कि वे उनके कार्य प्रवचन और शिक्षा को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाएं।
Ciascuno insomma compia la missione affidatagli e faccia la sua parte.
हम में से प्रत्येक जन को अपना प्रेरित कार्य पूरा करना है जिसे हमें दिया गया है। पौलुस का संबोधन हम सबों के लिए भी जीवन है। यह हमें इस बात की अनुभूति प्रदान करता है, कलीसिया में हम सभी प्रेरिताई के शिष्य होने और अपनी ओर से सहयोग हेतु बुलाए गए हैं। संत पापा ने दो सवालों की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा, मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ, कलीसिया के बारे में शिकायत करने के बदले मैं कैसे इसके प्रति निष्ठावान रह सकता हूँ। हम नम्रता और जुनून में अपनी सहभागिता दिखला सकते हैं। जुनून क्योंकि हमें अपने में मूक दर्शक नहीं होना चाहिए। नम्रता क्योंकि समुदाय में अपने को निष्ठापूर्वक देने का अर्थ अपने को केंद्र बिंदु में बनाए रखना नहीं है, जहां हम अपने को दूसरों से बेहतर समझते और उन्हें अपने निकट नहीं आने देते हैं। सिनोडल कलीसिया का अर्थ यही है। हर किसी की एक भूमिका है, क्योंकि कोई दूसरे का स्थान नहीं ले सकता या उनके ऊपर हो सकता है। ख्रिस्तियों में कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सभी एक हैं। सहभागिता का अर्थ अच्छी लड़ाई को जारी रखना भी है, जैसे कि पौलुस कहते हैं, क्योंकि सुसमाचार का प्रचार अपने में कभी उदासीन नहीं हो सकता है। यह चीजों को वैसा ही नहीं छोड़ता जैसे कि वे हैं। यह इस दुनिया की सोच विचार संग समझौता नहीं कर सकता है, बल्कि यह उन परिस्थितियों में जहाँ शक्ति का खेल है, बुराई, हिंसा, भ्रष्टाचार, अन्याय और अलगाव में ईश्वरीय राज की आग लगाता है। जब से यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, वह इतिहास में लड़ाई जारी है। जीवन और मृत्यु के बीच युद्ध, आशा और निराशा, बदतर स्थिति में त्याग और बेहतर हेतु संघर्ष की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसमें घृणा और विनाश की सभी शक्तियों की निश्चित हार तक कोई समझौता नहीं होगा।
Cosa possiamo fare insieme come chiesa?
दूसरा सवाल, हम कलीसिया के रूप में मिलकर एक साथ क्या कर सकते हैं जिससे विश्व अपने में अधिक मानवीय, न्यायपूर्ण और एकतामय, ईश्वर के लिए और अधिक खुला और मनुष्यों के बीच भ्रातृत्व कायम रहे। निश्चित रूप में हम अपनी कलीसियाई केंद्र की ओर लौटकर नहीं आ सकते और न ही फलहीन वाद विवाद तक ही सीमित होकर रह सकते हैं। इसके बदले हमें चाहिए कि हम इस दुनिया के सूखेपन में एक दूसरे को हरियाली पहुंचाने का प्रयास करें। संत पापा ने पुनः याजकीय वाद से बचे रहने का आह्वान किया। हम एक साथ मिलकर मानव जीवन की चिंता करें, सृष्टि को बचाने, श्रम का सम्मान, परिवारों की समस्याओं, बुजुर्गों की सेवा और वे जो परित्यक्त छोड़ दिए गए हैं या घृणित व्यवहार किए जाते उनकी देखरेख करनी है। दूसरे शब्दों में कलीसिया के रूप में हमारा बुलावा संवेदनशीलों के प्रति सेवा और करुणा के संस्कृति को बढ़ावा देना है, जिससे हर किसी के जीवन में सुसमाचार की खुशी चमक सके। हमारी लड़ाई यही है जो चुनौती भरी है। संत पापा ने अपने प्रवचन के अंत में सभी नव नियुक्त महाधर्माधीक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि परंपरा के अनुसार मैंने आपके लिए पालिका की आशीष की है। संत पेत्रुस के संग आप सभी शीघ्र तैयार होने के लिए बुलाए गए हैं, जिससे आप अपने रेवड़ की सेवा करते हुए अच्छी लड़ाई लड़ सकें। अच्छे चरवाहों को ईश्वर के सानिध्य में अपने लोगों के साथ उनके सामने आगे पीछे रहने की जरूरत है। संत पापा ने प्राधिधर्माध्यक्ष बर्थोलोमियो के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए उनके द्वारा प्रेषित प्रतिनिधियों का भी अभिवादन किया। हम एक साथ मिलकर चलें, क्योंकि एक साथ रहने के द्वारा ही सुसमाचार की बीज और भ्रातृत्व का साक्ष दे सकेंगे।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही प्रेम है मेरे प्रभु, मुझे प्रेम से भर दे प्रभु। तेरा प्रेम मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं, ऐसा अनुग्रह पाऊं सदा।
तू ही करुणा मेरे प्रभु, मुझे करुणा से भर दे प्रभु। तेरी करुणा मैं जग में फैलाऊं।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस और संत पौलुस के पर्व दिवस पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में पवित्र मिसा के दौरान नए मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्षों के लिए पालिया को आशीष दिया और विश्वासियों को याद दिलाया कि कलीसिया जल्दी उठने और अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए बुलाई गई है। पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता कार्डिनल मंडल के डीन कार्डिनल जोवानी बत्तीस्ता रे ने की और संत पापा फ्रांसिस ने प्रवचन दिया। मिसा समारोह के अंत में संत पापा ने उत्कृष्ट परंपरा को याद करते हुए पालिया की आशीष दी। यह मेट्रोपॉलिटन महाधर्माध्यक्षों द्वारा पहना जाने वाला एक धार्मिक परिधान है जो संत पापा के साथ एकता का प्रतीक है। संत पापा फ्रांसिस ने महाधर्माध्यक्षों को याद दिलाया कि वे जल्दी उठने के रूप में सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं। झुंड पर चौकसी प्रहरी और अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए कभी अकेले नहीं, बल्कि ईश्वर के पवित्र और विश्वासी लोग उनके साथ हैं। और संत पापा ने उन्हें एक साथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि केवल एक साथ ही हम सुसमाचार के बीच और भाईचारे के गवाह हो सकते हैं। और संत पापा फ्रांसिस ने संत पेत्रुस और संत पौलुस के पर्व दिवस पर संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में जमा हुए सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। संत पापा ने धर्म विधि के पाठ पर चिंतन किया। संत पापा ने कहा, धर्म विधि के पाठ हमारे लिए पेत्रुस की घोषणा को प्रस्तुत करता है, आप मसीह हैं, जीवंत ईश्वर के पुत्र। यह विश्वास की अभिव्यक्ति है जिसे पेत्रुस अपनी मानवीय समझ के अनुरूप व्यक्त नहीं करते, बल्कि ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। मछुआरे के रूप में विख्यात पेत्रुस की यह एक यात्रा की शुरुआत थी। इन वचनों को घोषित करने के लिए उसे एक खास यात्रा करनी पड़ी जो उसके पूरे जीवन को सम्माहित करता है। यह विश्वास की एक शिक्षुता है जो पेत्रुस और पौलुस दोनों को अपने में सम्माहित करता है। हम भी यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, लेकिन यह विश्वास हमारी सोच और कार्य के अनुरूप सुसमाचार से अपने को संयुक्त करने हेतु धैर्य और बहुत अधिक नम्रता की मांग करता है। संत पेत्रुस को विश्वास में प्रौढ़ होने के लिए समय की जरूरत हुई। शुरू में उसने क्रूस के बारे में सोचकर भय का अनुभव किया, लेकिन अपने जीवन के अंत में उन्होंने साहस के साथ क्रूसित होने तक, जैसे हम प्रचलन के अनुसार जानते हैं, उसे क्रूस पर सिर नीचे और पैर ऊपर करके यीशु का साक्ष्य देना पड़ा। संत पापा ने कहा कि पौलुस भी धीरे से अपने विश्वास में दृढ़ हुआ। उनके जीवन में अनिश्चितता और संदेह के क्षण आए। पुनर्जीवित प्रभु उन्हें दमिश्क की राह में दिखाई दिए, जिसके फलस्वरूप ख्रिस्तियों को प्रताड़ित करने वाला स्वयं ख्रिस्तीय बन गया। यह पौलुस के लिए उस मार्ग की शुरुआत थी जहां उन्हें बहुत सारे मुसीबतों, असफलताओं और निरंतर प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, जिसे वे अपने शरीर के कांटों की संज्ञा देते हैं। संत पापा ने कहा, माता मरियम प्रेरितों की रानी हमें प्रभु का अनुसरण करने की शिक्षा दे, जिससे हम रोज दिन विश्वास के मार्ग में आगे बढ़ सकें। देवदूत प्रार्थना का पाठ करने के बाद संत पापा ने यूक्रेन के लोगों को याद किया। उन्होंने कहा कि वे क्रेमेंचुक शॉपिंग सेंटर में मारने वाले बर्बर हमलों से त्रस्त हैं। संत पापा प्रार्थना करते हैं कि यह युद्ध जल्दी ही समाप्त हो जाए। संत पापा ने बिना थके शांति के लिए प्रार्थना में दृढ़ रहने के निमंत्रण को नवीनीकृत किया। प्रभु संवाद के उन रास्तों को खोल सकते हैं जो पुरुष नहीं चाहते हैं या नहीं पा सकते हैं, और हमें यूक्रेनी आबादी की मदद करने की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जो इतने पीड़ित हैं। संत पापा ने कहा, हाल के दिनों में रोम में बहुत अधिक तापमान के कारण कई जगह आग लग गई है, जबकि कई जगहों पर सूखा अब भी एक गंभीर समस्या बनी है, जिससे उत्पादन गतिविधियों और पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। संत पापा की उम्मीद है कि इन आपात स्थितियों का सामना करने वाले भविष्य की आपात स्थितियों को रोकने के लिए आवश्यक उपायों को लागू किया जाएगा। इसके बाद संत पापा ने कहा कि आज ओसर्वातोरे दी स्त्रादा का पहला अंक, ओसर्वातोरे रोमानो का नया मासिक पत्रिका, संत पेत्रुस गिरजाघर के प्रांगण में वितरित किया गया। इस पत्रिका में गरीब और हाशिए के लोग संपादकीय कार्य में भाग ले रहे हैं। यह पत्रिका मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन अगर कोई कुछ दान देना चाहता है तो वह स्वेच्छा से दे सकता है। ओसर्वातोरे दी स्त्रादा का उद्देश्य गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों को एक ड्राइंग के माध्यम से कहानी सुनाकर या एक राय व्यक्त करने के लिए खुद को व्यक्त करने का एक स्थान देना है। और संत पापा फ्रांसिस ने अमेरिका में टेक्सास के संत अंतोनी में सोमवार को हुई एक त्रासदी के शिकार प्रवासियों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। संयुक्त राज्य और मेक्सिको सीमा पर मानव तस्करी के प्रयास में एक लोरी के अंदर कम से कम 46 लोग मृत पाए गए। मध्य और दक्षिण अमेरिका में गरीबी से भाग रहे लोग अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में बेहतर जीवन की उम्मीद में यूएस मेक्सिको सीमा पार करने की कोशिश में खतरनाक यात्रा करते हैं। इन यात्राओं में बहुत से लोग मर जाते हैं। संत अंतोनियो सुरक्षा प्रमुख चार्ल्स हुड के अनुसार ट्रेलर में पाए गए 4 बच्चों सहित अन्य 16 को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। संत पापा फ्रांसिस ने मंगलवार को एक ट्वीट के माध्यम से सोमवार की त्रासदी के पीड़ितों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की। संदेश में उन्होंने लिखा, मैंने बड़े दुख के साथ टेक्सास और मेलिला के अप्रवासियों की त्रासदी का समाचार सुना। आइए हम एक साथ उन भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करें जो बेहतर भविष्य की आशा के साथ मौत के शिकार हो गए। हम हमारे लिए भी प्रार्थना करें कि हम अपना हृदय खोल सकें, जिससे कि यह दुर्भाग्य फिर कभी न हो। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह से साल के अंत तक रूस के खिलाफ युद्ध को समाप्त करने में मदद करने का आग्रह किया। रूस द्वारा राजधानी कीव और अन्य शहरों में मिसाइल दागने के बाद उन्होंने यह बात कही। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।